भजन संहिता 61। हम आज अपने बाइबल अध्ययन के लिए भजन 61 खोलें। भजन 61 पद 1। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन। इब्रानी भाषा में चिल्लाना शब्द बहुत प्रबल है। वास्तव में ये इस प्रकार है, मेरे रोने की आवाज सुन हे प्रभु। दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो कि कठिनाइयों में भी बेफिक्र रहता था। कुछ लोग अपने स्वभाव में काफी संकोची होते हैं। मैं भी कम बोलने वाला हूं, परंतु दाऊद ऐसा नहीं था। जब वो कठिनाई में होता था तो वो चाहता था कि सब जाने, विशेषकर परमेश्वर। इसलिए वो विलाप करता था, मेरे रोने की आवाज सुन हे परमेश्वर। भजन 61 पद 1 में आगे लिखा है, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। ऐसा समझा जाता है कि दाऊद ने ये भजन तब लिखा था जब वो अबशलोम के विद्रोह के समय उसे भाग रहा था, जब अबशलोम सेना लेकर हेब्रोन से आया कि वो यरूशलेम को जीते, तब दाऊद यर्दन नदी के पार भाग गया था। दाऊद अपने बेटे के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता था, वो अपने ही बेटे के विरुद्ध खड़ा रहना नहीं चाहता था। इसलिए वो यरूशलेम में नहीं रहा, क्योंकि उस समय यरूशलेम शहरपनाह से घिरा हुआ था और आक्रमणकारियों को रोकना आसान था, और वो अबशलोम को निस्संदेह रोक सकता था। परंतु वो उसका पुत्र था, उसका हृदय दुखी था, इसलिए वो यरूशलेम से अपनी सेना और अपने अनुयायियों के साथ भाग गया, जैसे कि अबशलोम से हार मान ली हो। वो यर्दन नदी के पास भाग गया, वहां वो परमेश्वर को पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। भजन 61 पद 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से, वो प्रतिज्ञा के देश से खदेड़ दिया गया था। अब वो सोचता है कि वो पृथ्वी से बाहर हो गया। यदि हम उसे अपनी भाषा में बोले तो हम कहेंगे संसार के दूसरे सिरे से। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, और तब हमें लगता है कि बस ये तो पृथ्वी का अंत ही है। दूसरे शब्दों में बहुत हो गया, यही संसार का अंत है, यही तक और इसकी गहराई तक मैं जा सकता था, अब बस हो गया। भजन 61 पद 2 में आगे लिखा है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। बहुत सी बातें हमारे हृदय को वशीभूत करती हैं। हम सब अंततः किसी न किसी परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं, जैसे प्रियजन की मृत्यु, पैसे की तंगी, नौकरी का चला जाना या बीमार हो जाना आदि। इन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूं, ऐसे समय में मैं किसकी ओर देखता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। कुछ लोग दवाइयों, मदिरा और आत्महत्या पर निर्भर हो जाते हैं। दाऊद कहता है, जब मेरा हृदय दुखी होता है। भजन 61 पद 2 के अंत में लिखा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। मेरा एक ही शरण स्थान है, एक गढ़ है और एक ही सुरक्षा का स्थान है। दाऊद कहता है, पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मसीह हमारी चट्टान है, वो चट्टान मुझसे ऊंची है। ये ऐसा स्थान है जहां मैं तूफान से और शत्रुओं से बच सकता हूं। चट्टान बाइबल में शक्ति का प्रतीक है। बाइबल यहोवा के बारे में कहती है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, वो हमारी चट्टान है। पहला कुरिंथियों अध्याय 10 में पौलुस ने चट्टान के बारे में कहा, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वही जीवनदायक सोता है जो सब मनुष्यों के जीवन के लिए है। इसलिए मेरा हृदय संसारिक बातों से परेशान होता है, तब प्रभु जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चलता है। ये कैसा सुखदायक विचार है कि अंत में मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं। एक गीत का पद है, वो अनुग्रह देता है। इस गीत में ये विचार सुंदरता से दर्शाया गया है। जब हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाए, जब हमारी शक्ति चली जाए, जब हमारे जीवन का सफर आधा रह जाए, जब हमारे बनाए हुए उपायों का अंत हो जाए, तब हमारे स्वर्गीय पिता का भरपूरी से देना आरंभ होता है। उसकी दया की कोई सीमा नहीं है, उसकी दया को कोई माप नहीं सकता, उसकी शक्ति की सीमा मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपने उस धन से जो यीशु मसीह में है देता ही रहता है। जब मैं जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंचूंगा और परिस्थितियों से घिर जाऊंगा, तब उसको पुकार कर कहूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। तब उस अंतिम समय पर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य आरंभ करता है। बाइबल में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उनके जीवन के अंत तक ले गया। एक स्वर्गदूत याकूब से पूरी रात लड़ाई करता रहा। वो दिन याकूब के लिए खराब दिन था, क्योंकि उसने अपने ससुर को छोड़ा था और उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उनमें आपस में वाद विवाद हुआ था। उनकी जुदाई का अंत प्रसन्नता का कारण नहीं था। तो भी जब वे एक दूसरे से अलग हुए, तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, उत्पत्ति 31 अध्याय 49 पद, मिस्बा, जिसका अर्थ है प्रभु हमें जुदा होते हुए देख रहा है। तो भी ये सुखद ध्वनि नहीं थी जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, परंतु इब्रानी में इसका अर्थ होता है, तुमने मुझे फाड़ा और अब लूटे हुए माल के साथ तुम जा रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकता क्योंकि तुम अब चले जाओगे। तुम मेरी पुत्रियों, मेरे पशु, मेरे जानवर ले गए, अब मैं तुम्हें और सह नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर तुम्हें देखे जब हम एक दूसरे से जुदा रहते हैं। ये एक बुरा दृश्य था। याकूब नहीं जानता था कि वो कैसे आगे जाएगा। सत्य तो ये था कि यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो वो शांति से विदा नहीं हो पाता। एक रात पहले परमेश्वर ने उसके ससुर को पकड़ा और उससे कहा कि तू याकूब को कुछ मत कह। उसने याकूब से कहा, देख, मुझ में तुझे चोट पहुंचाने की क्षमता है, परंतु पिछली रात परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुझे ना छू। इस तरह वो उनके बीच आपसी मन मुटाव वाला अनुभव रहा। याकूब ने अपने ससुर का घर छोड़ दिया, वो बाबुल की तरफ चल दिया, और याकूब को ये वचन मिला, तेरा भाई बहुत लोगों के साथ तुझे मिलने आ रहा है, परंतु ये घर वापस लौटने की स्वागत पार्टी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं या देखना चाहते हैं, क्योंकि तुमने एसाव को 17 वर्ष पहले देखा था जब वो कह रहा था, जैसे ही मैं मौका पाऊंगा मैं उसे मार डालूंगा। अब यदि उसका भाई उसको घर ले जाने आ रहा था तो उसे 200-300 आदमियों की आवश्यकता नहीं थी कि वो उसका स्वागत करे। इसलिए याकूब जानता था कि कठिनाई आने वाली है, वो परेशान था। रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और वो याकूब से सुबह तक मल्लयुद्ध करता रहा। परमेश्वर याकूब को उसकी मानवीय क्षमता के अंत पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कल उसे संपूर्ण शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली थी। कल वो एसाव से मिलने वाला था और नहीं जानता था कि परिस्थितियां क्या होगी। वो जोखिम भरी हो सकती थी और पूरी रात, जिस रात उसे नींद की आवश्यकता थी और कल के लिए शक्ति चाहिए थी, वो स्वर्ग दूत से लड़ता रहा। इस समय याकूब 96 वर्ष का बूढ़ा आदमी था। मेरा मतलब वो जवान नहीं था, परंतु फिर भी वो पांव फटने तक लड़ता रहा। स्वर्गदूत ने देखा कि वो बहुत पक्के इरादे वाला मनुष्य है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, इसलिए याकूब की जांघ की नस उस मल युद्ध में चढ़ गई और उसने स्वर्गदूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब इस समय जो उसके पास था उसी के आधार पर ही लटका हुआ था। वो टूट गया और रो पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं बताया गया है कि वो रोया, परंतु होशे हमें बताता है कि याकूब की आंखों में रोने से आंसू आ गए थे। वो टूट चुका था। उसने कहा, मैं तुझे जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। ये कोई मांग नहीं थी, एक याचिका थी जो आंसुओं से भरी हुई थी। कृपया मुझे आशीष दिए बिना मत जाना। वो अब हार गया था, परंतु परमेश्वर ने जैसे चाहा था उसे बना लिया था। याकूब नाम का अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला, अड़ंगा मारने वाला, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी हुई थी। इसलिए कहा गया है, देखो उस एड़ी पकड़ने वाले को। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है, एड़ी पकड़ने वाला। दूत ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा। उसका नाम बदल दिया गया। अब वो धोखेबाज या अड़ंगा मारने वाला नहीं रहा। ये मनुष्य इसराइल के परमेश्वर के अधीन हो गया था। कितना बदलाव था उसके जीवन में। परमेश्वर उसको मार के अंत में लाया ताकि उसमें बदलाव कर सके। इस तरह याकूब की आखिरी निराशा की पुकार जो उसके रोने और आंसुओं के साथ निकली, वास्तव में उसकी पहली विजय थी। हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है। जब मेरा हृदय परेशानियों के वशीभूत होता है और मैं निराशा में परमेश्वर की ओर फिरता हूं, तब मेरे जीवन में परमेश्वर की विजय की महान शुरुआत होती है। वो मुझे उस चट्टान पर ले चलता है जो मुझसे ऊंची है। भजन 61 पद 3 से लेकर 8 तक। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। तू ही मेरी चट्टान में बना हुआ शरण स्थान है और तू ही मेरा मजबूत गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट या कवर में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवे हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। दाऊद इस भजन का अंत भरोसे के शब्दों से करता है। परमेश्वर तू देखभाल करेगा, वो चट्टान जो मुझसे ऊंची है वो मेरी सुधि लेगी, वो मुझे वापस लाएगा, मैं तेरे मंडप में वास करूंगा, मैं तेरे सम्मुख रहा करूंगा।